नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC की सचिव पारुल गौर मित्तल ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग ने विभिन्न विभागों की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर और उम्मीदवारों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अपलोड कर दिए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से देखने और परीक्षाओं के लिए उसी के अनुसार तैयारी करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवगठित APPSC ने योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हुए साक्षात्कार और परीक्षा आयोजित करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बदलाव किए हैं। इसके लिए देश के विभिन्न प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ साक्षात्कार सत्र का हिस्सा होंगे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी को छोड़कर केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही परिणाम उसी दिन घोषित और वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा आयोग अपने नए नियमों का पालन करते हुए संबंधित विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों के रिक्त पदों का विज्ञापन करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर ने पूर्वानुमान लगाया है कि राज्य में लोंगडिंग, ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग जिले ऑरेंज अलर्ट जोन में हैं। इस बीच ईस्ट सियांग, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली और अंजाव को छोड़कर बाकी जिले येलो अलर्ट जोन में हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट जोन वाले दोनों जिलों में आज अलग अलग जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों के उपलक्ष्य में 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। ये कार्यक्रम आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये टिकट खेलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज 5वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति स्थापित हो गई है और जम्मू कश्मीर अपने दृढ़ नागरिकों के समर्थन से विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल वक्कर उज जमान ने घोषणा की कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र एक समर्पित सुविधा है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राजधानी ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर टालो पोतम ने कल एक आदेश जारी किया जिसमें आम लोगों, खासतौर पर दुकानों, रेस्तराओं, होटलों और किराए के घरों के मालिकों को कचरा उठाने वाले गाड़ियों के अलावा कॉलोनियों और सेक्टरों की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से कचरा फेंकने से मना किया है। इसके अलावा पोटम ने ईटानगर नगर निगम और जिला सूचना एवं जनसंपर्क को निर्देश दिया कि वे इसे राजधानी में सख्ती से लागू करने के लिए सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से प्रचारित करें। ईस्ट सियांग के डिप्टी कमिश्नर ताई तागू ने कल शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के मौके पर सत्यापन और मूल्यांकन के लिए पासीघाट और रुकसिन उप विभाग स्थलों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने निष्पादन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विनिर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादित किया जा रहा है। उन्होंने साइट इंजीनियरों को भी सभी परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया। इस महीने की 1 से 7 तारीख तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन को सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है। इस वर्ष का विषय है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता। इस बीच स्तनपान को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इस महीने की 1 तारीख को जिला अस्पताल डोईमुख में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।